हरे कृष्णा हरे कृष्णा
आप लोग कृपा करके साथ में रहे थे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हाथ जोड़कर प्रार्थना में भाग लीजिए, श्रद्धा से सुनिए और फिर उत्साह के साथ सब मिलकर उच्चारण कीजिए। नमः ॐ विष्णुपादाय
नमः ॐ विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले
कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदान्त
श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामिनिति नामिने
स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे
नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे
गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषशून्यवादी
निर्विशेषशून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे
पाश्चात्य देश तारिणे
गुरवे गौरचंद्राय
गुरवे गौरचंद्राय
राधिकाय तदालये
राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः
नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च
देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय
नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः
गोविंदाय नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य
जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद
प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत
श्री अद्वैत
गदाधर
गदाधर
शिवास आदि गौरा भक्तवृंद
हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। कैलाश आवास योजना कैलाश कॉलोनी में भगवान परम करुणामय भोलानाथ कैलाश शंकर शंभु परम वैष्णव के शरण में और पीछे हनुमान जी का भी हम आए तो पूजन हो रहा था, उनके चरण में इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सोनाली बसु जी के प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सनातन वैदिक धर्म भगवत गीता और भगवत भागवत के ऊपर आधारित का शुभ आरंभ आपके इस झांसी नगर से किया था। पूरा विश्व झांसी को जानता है श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद के इस कार्य के कारण पूरा विश्व झांसी को जानता है। कि प्रभुपाद जी मैं इसका शुभ आरंभ झांसी में किया था और उनके इस्कान स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सुखी कैसे बनाया जाए। भगवान सुख का सागर है, वो तो आनंदमय है, हम सब भगवान के अंश हैं तो हमको भी सुखी होना चाहिए, लेकिन हम दुनिया में सुखी नहीं है तो उसका कारण क्या है और सुख कैसे प्राप्त हो। तो विश्व के अंदर इस सुख और सुख कब होता है, किसी को सुख प्राप्त कब हो जाए, तो होता है जब शांति होती, शांति के बाद सुख आता है, और शांति कब होती है जब मन एकाग्र होता है। अब मन है किसका, जिसका मन है जब उसके साथ मिलेगा तभी सुखी होगा, तभी शांत होगा, और मन शांत तब होता है जब बुद्धि निर्णायक हो और सती मती हो। बुद्धि को मती कहते हैं। अब आपके यहां मतदान हो रहे हैं ना, मती का मतलब वो बुद्धि जो भविष्य में किसी को अपने जीवन का लक्ष्य चुन ले। जो पुराने जमाने की बातें याद होती हैं बुद्धि में उसको स्मृति बोलते हैं, जो तत्कालीन प्रश्न का उत्तर अच्छा देगा उसको कहते हैं बुद्धि, और जो भविष्य में जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसको मती कहते हैं। ये बुद्धि के तीन स्तर हैं, तीन अवस्थाएं हैं, भूत और वर्तमान और भविष्य। तो भविष्य की बुद्धि जिसकी मति सती होती है वही सुखी हो सकता है, और मति सती कैसे होती है इसके लिए हम भगवत गीता का एक श्लोक आपके साथ आज पढ़ेंगे और फिर उसका हम श्रवण वर्णन करके सुख का साधन भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है, और हमारे साथ आप इसका उच्चारण करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। ये कहां से दूसरा खुल गया। न अस्ति बुद्धे अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्तिर्बुधिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यन्तः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो ये श्लोक भगवान के मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए एक प्रेरणादायक श्लोक है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, युक्त कहते हैं जुड़ने को, मिलने को। जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी हुई है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी हुई है। तो बुद्धि भगवान से कैसे जुड़े, भगवान कहते हैं मई बुद्धिम निवेशय, आपकी बुद्धि का निवास स्थान, आपकी बुद्धि में मेरा निवास स्थान बनाओ, रहने की जगह भगवान की कहां है हमारी बुद्धि में। हम कौन से ये शास्त्र से श्लोक पढ़ रहे हैं बच्चों, भगवत गीता से, और भगवत गीता में जो चित्र है उसके चित्र में भगवान श्री कृष्ण कहां बैठे हैं, सारथी के जगह पे कहां बैठे हैं, और सारथी की जगह पे। बहुत अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैदिक साहित्य में हमारे शरीर को रथ कहा गया है, और हम जीव आत्मा इसमें यात्री हैं, इसके मालिक, बुद्धि इसमें सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो अगर ये हमारा शरीर रथ है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में कहां बैठे हैं? सारथी के जगह पे। तो हम जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, वो हम सबके सारथी बनके हमारी बुद्धि में विराजमान होने को तैयार हैं। अब हमको अर्जुन ने कैसे भगवान को सारथी स्वीकार किया था, वो हमको साधन अपनाना चाहिए। वैसे भगवान निरंतर सारथी हैं, सबके सारथी हैं। भगवान कभी श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं, श्रेय भक्त को देते हैं, काम भगवान करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जब कहीं आग लगती है तो जलाती तो अग्नि है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, वायु नहीं होगी तो अग्नि जला सकती है? बगैर ऑक्सीजन वायु के अग्नि जला सकती है? नहीं ना। तो काम तो करती है ऑक्सीजन, और नाम होता है आग का। काम तो वायु करती है मुख्य, नाम अग्नि का होता है। ऐसे सारथी भगवान सारा काम करता है, लेकिन श्रेय मिलता है जीव को। तो न अस्ति अयुक्तस्य बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसने भगवान को बुद्धि में सारथी के रूप में निमंत्रण दे के विराजमान नहीं किया है। अर्जुन गया था ना भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में सहायता के लिए, और दुर्योधन भी गया था श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए। दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के जामवंती पुत्र सांबा के साथ ब्याही थी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संबंधी है, और सॉरी दुर्योधन का संबंधी है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ विवाह है, वो भी भगवान का संबंधी, और भगवान की बुआ कुंती का पुत्र है। तो ये भाई भी है और बहनोई भी है। तो दोनों सहायता के लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका के महल में ऐसे निद्रा का अभिनय करके लेटे हुए थे। एक सोफा तो सुंदर रखा था अपने सरानिये सर के पास, और दुर्योधन जाके उस सोफे के ऊपर बैठा। भगवान की आंखें बंद है, और थोड़े विलंब के बाद अर्जुन भी आया, लेकिन अर्जुन भगवान के चरणों के पास आके बैठ गया। भगवान ने आंखें खोली तो नजर किसके ऊपर पहले पड़नी चाहिए? जो गर्दन के पास बैठा है उसके पास, या जो चरण के पास बैठा है? चरण के पास। पार्थ कैसे आए? तब तक तो दुर्योधन बोल उठा, हे द्वारकाधीश, मैं आया हूं पहले। तो भगवान ने थोड़ा सा टेढ़ी गर्दन करे, ऐसे टेढ़ी गर्दन की, और देखा, ओ युवराज, हस्तना के युवराज दुर्योधन, आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन भगवान ने टेढ़ा गर्दन करके देखा, टेढ़ी आंख से देखा, उसी दिन युद्ध का निर्णय हो गया। भगवान जिसको टेढ़ी आंख से देखते हैं तो उसका तो उस वक्त ही निर्णय हो चुका था। फिर भी भगवान ने कहा, कैसे आप पधारे हैं? तो दोनों ने कहा कि अब तो एक महा युद्ध होने वाला है। इस महाभारत में, महाभारत का अर्थ युद्ध कभी नहीं समझे मानना। महाभारत तो पांचवा वेद है, और महाभारत में लिखा है कि चतुर्मास में जो इसका प्राण करता है भगवत भक्ति प्राप्त करता है। जिसके घर में महाभारत है वो बड़ा भाग्यशाली है। ये तो दुष्ट लोगों ने जब यहां राज किया तो कहा महाभारत जिसके घर में होता है उसमें झगड़ा होता है। महाभारत मतलब भारत की महानता का इतिहास, उसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र में युद्ध है। युद्ध कुरुक्षेत्र का, महाभारत युद्ध का नाम नहीं है। ये दुर्वभावना दुष्टों ने धर्म के विपरीत लोगों को करने के लिए डाली थी। तो भविष्य में होने वाला युद्ध है, हम आपसे सहायता लेने आए। भगवान ने एकदम निर्णय ले लिया, तत्काल बोला, एक तरफ हमारी यदुवंशियों की चतुरंगनी सेना कृतवर्मा सेनापति, और एक तरफ मैं अकेला और भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब सुनो भाई अर्जुन, एक तो छोटा भी है दुर्योधन तुमसे, और दूसरा पहले मेरी नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी है, अब चुनेगा पहला अर्जुन। अब तो दुर्योधन बहुत बड़ा परेशान हो गया कि युद्ध हो रहा है, सेना ले रहा हर एक, लेकिन अर्जुन ने जरा भी सोचा नहीं, कहा श्री कृष्ण मैं आपको चुनता हूं। अहि दुर्योधन खुश होके उठा, जय हो, ओ द्वारकाधीश आपकी सेना भेज दीजिएगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे ग्वाले को क्या करूंगा, अस्त्र शस्त्र उठाएगा नहीं, इसको ले जाके क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन की बुद्धिमती देखो, उसकी बुद्धि कृष्ण से युक्त थी, इसको कहते हैं कृष्ण के साथ बुद्धि जिसकी जुड़ी हुई है, उसकी बुद्धि ने मत कर लिया। क्या मति बना ली कि कृष्ण अगर मेरे साथ रहे तो मेरी विजय होगी, चाहे सेना हो ना हो, लेकिन ये तो जिसकी बुद्धि सती मती उसको कहते हैं जिसने भगवान को ग्रहण किया। वासुदेव को जो ग्रहण करता है उसकी मती को कहते हैं सती मती, और जो भगवान को ग्रहण नहीं करती है वो मती भ्रमित मती संसार में सदा सबके लिए दुख का कारण बनती है। तो यहां एक सिद्धांत समझ लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या भगवान को मांग लो या भगवान से मांग लो। प्रायः सब लोग भगवान से मांगते हैं, कोई भाग्यशाली भगवान को मांगता है। जो भगवान को मांगता है वो अयुक्तस, वो युक्तस्य है, जो भगवान से मांगता है वो अयुक्तस्य है। दोनों में बड़ा अंतर है। हमें तो लोगों के ऊपर हंसी तब आती है जब भगवान भोलेनाथ को कहते हैं, हे भोलेनाथ हमारा मकान बनना है, तो भोलेनाथ हंसता है कि मैंने अपना अभी तक नहीं बनाया, तेरा कहां से बनाऊंगा मूर्ख, मैं कैलाश में पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं। एक दफा पार्वती ने बहुत जिद किया, बहुत सुंदर महल बनाया, और गृह प्रवेश के समय पंडितों ने पूजा की का दक्षिणा, हमारे पास तो न कुर्ता था न पैसा था, हमने बोला ये मकान वापस आपको दक्षिणा में देते हैं। तो स्वयं ने कभी आज तक मकान बनाया नहीं, तो आप हाथ जोड़ कर हमारा मकान बना। अब जाके हनुमान जी के हाथ जोड़े, हनुमान हमारा विवाह करा है, मैं ब्रह्मचारी, मैंने तो पत्नी अपने लिए ढूंढी नहीं, तुम्हारी कहां से ढूंढूं। लेकिन फिर हनुमान कहता है कहीं कोई भाग गई है तो मुझे बताना, मैं ढूंढ के लाता हूं, उसका पता लगाना मुझे आता है। तो मांगने भी तो आना चाहिए ना। कहते हैं एक बार अकबर के मन में ऐसे आया, शहनशाह के बीरबल सब लोग जो है वो बहुत बड़े भारत में रामायण पढ़ते हैं, हमारी रामायण लिखो, अकबरायण लिखो। तो एक महीने के बाद वापस आया, बोला मेरी रामायण तैयार है। बोला हाँ हो गई, बस एक प्रश्न रह गया महाराज, वो रामायण में सीता को रावण उठा के गया था, आपकी रानी को कौन उठा के गया, बस वो एक नाम भरना है, रामायण आपकी तैयार। बोला ये रामायण हमको नहीं चाहिए। तो बोला कोई बात नहीं, मेरी महाभारत लिखो। महाभारत लिखते सब, महाभारत तैयार हो गई एक महीने के बाद, अब तैयार है। बोला बिल्कुल महाराज तैयार, बस एक प्रश्न है, वो द्रौपदी के पांच पांडव पति थे, अब बताइए रानी के पांच कौन कौन से नाम, चार लिखूं और। बोला ये नहीं चाहिए। तो ये ऐसे शास्त्र नहीं है जो 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 जिसका भगवान से संबंध नहीं है वो ये समझ ही नहीं सकते, और भगवान से क्या मांगना है ये लोगों को आता ही नहीं है। इतने सारे छत्संग हो रहे हैं, इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, लेकिन लोगों की भावना में परिवर्तन क्यों नहीं आया, लोगों के जीवन में सद्भावना क्यों नहीं आता है। रोज नारा लगाते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन हम ही बाहर जाते मंदिर के बाहर से चप्पल, वो चार हम में से चप्पल उठाने वाले होते हैं और पांच सात जेब काटने वाले होते हैं। अरे भगवान के आगे रखी हुई दान पेटी को इतना बड़ा ताला क्यों लेते हैं, भगवान के सामने भी तो चोरी करते हैं इसलिए ताला लगाया है ना। वहां कोई ताला की जरूरत है क्या, भगवान के सामने वहां कुछ देने वाले हैं, कोई उठाने वाले भी है। कहते हनुमान के मंदिर देखे, दया और धर्म के मंदिर देखे, हनुमान के बंदर देखे, कुछ अंग्रेज कलंदर देखे, और कुछ पापी उनके अंदर देखे। तो ये तो बड़े, और इसको दान पेटी नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं भगवान कोई भिखार है, लक्ष्मीपति कोई भिखारी है, इसको लिखते हैं प्रणामी। जब भगवान को प्रणाम किया जाता है तो भेंट चढ़ाई जाती है। ये हर प्रणाम करने वाले के ऊपर दायित्व है कि उसमें भेंट चढ़ाए। दान कोई भगवान भिखारी थोड़ी, वो तो लक्ष्मीपति है, वही सबको देने वाला है, उसका नाम है प्रणामी। और इसमें भेंट पात्र कहते हैं, नहीं तो जिसमें भगवान को कुछ, जैसे यज्ञ में दक्षिणा होती है, पंडित को ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, भगवान को प्रणामी दी जाती है प्रणाम करके। सो अब भगवान को मांगना है या भगवान से मांगना है, पहला सिद्धांत जीवन में एक उदाहरण के साथ ये समझा देते हैं। एक राजा था, उसका जन्मदिन था। उसने कहा आज मेरे राज में जिसको जो चीज चाहिए उसके ऊपर हाथ रखे और ले जाए। तो कोई लोग को गाय चाहिए, गाय ले गया, किसको भूमि चाहिए, भूमि ले लिया, किसी को स्वर्ण चाहिए, स्वर्ण ले लिया। एक बुढ़िया माता जी आ गई, बोला मुझे राजा का दर्शन करना है। अरे माता जी जो चाहिए वो ले लो, राजा को मिलके क्या करोगी। नहीं 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 नहीं, महाराज का दर्शन करना है। अंदर ले गए, अरे माता जी बोलो क्या करना है, आपके जन्मदिन की बधाई हो बेटा, ये सब क्या हो रहा है बाल, जो जिस चीज के ऊपर हाथ रखे वो उसके, देखो सब ले जा रहे हैं। अरे बेटा ये सच है? हाँ मां सच है। और बुढ़िया ने हाथ लंबा करके राजा के सर के ऊपर रख दिया, बोला तू मेरा, बोला तू फिर राजमाता है, बैठ जा अंदर। अब बताओ कोई गा ले जाने वाले बुद्धिमान है कि राजा की माता बन के घर में बैठे हुआ बुद्धिमान है? वो तो राजमाता हो गई, तो राज के अंदर रही, अब कुछ मांगने की जरूरत तो नहीं रह गई ना। तो जो भगवान को मांग लेता है उसको फिर कभी मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका देखभाल भगवान करता है। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामि अहम्, मैं अपने भक्तों की जरूरत को पूरी करता हूं, जो नहीं है उसको लाके देता हूं, जो है उसकी सुरक्षा का भार भी मैं अपने ऊपर उठाता हूं। तो भगवान सुरक्षा का भार उठा के रक्षा का काम भी करते हैं और जो कमी है उसको पूरा करते हैं। तो अयुक्त न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, सती मती नहीं है, तो कहते हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायतस्य भावना। तो फिर उसकी भावना कहां से आएगी? भावना कहां होती है? हृदय में भावना होती है। मन जिसका शांत कैसे होगा, तो फिर उसका मन एकाग्र कैसे होगा? जिसकी बुद्धि चंचल इधर उधर भागने वाली है, निर्णय नहीं कर पाती है, तो वो उसका मन कहे कैसे एकाग्र होगा? न चा भाव्यंतः, जिसका मन एकाग्र नहीं है उसके पास शांति कहां से आएगी? अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है उसके पास सुख कहां से आएगा? तो अब सुख कैसे मिलेगा? तो सुख का साधन अब क्या है? भगवान से बुद्धि को, बुद्धि में भगवान को बिठाना। तो भगवान करते क्या है, जब सारथी के स्थान पे भगवान जब सारथी के स्थान के ऊपर बैठते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं भगवान? लगाम पकड़ के घोड़ों को संभालते हैं। तो हमारे इंद्रियों रूपी घोड़ों का लगाम है मन, जो हमसे संभलता नहीं है। संभलता तो हम दुनिया में होते क्यों? अब एक बात याद रखो, जब देहांत किसी का होता है, शरीर छूटता है, तो शरीर तो यहीं पड़ा होता है, और तब सब कहते हैं वो चला गया। और ये भाषा तो हमने सुनी है कि भाई अमुक व्यक्ति चला गया, तो कौन चला गया? वो तो शरीर उधर ही पड़ा होता है, इसका मतलब शरीर के अंदर कोई और चीज थी ना, वो चली गई। कौन था वो जो चला गया? आत्मा था। लेकिन आत्मा ऐसे कैसे गया होगा? आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि अहंकार और भौतिक भावनाओं से दूषित चित्त वाला होता है। तो हम जब से हम भगवान से अलग हुए हैं तब से एक ही मन हमारे साथ सदा रहता है। शरीर बदला है, कोटि कोटि शरीर बदले हैं, लेकिन मन वही एक का एक हमारे साथ रहता है, मन नहीं बदलता। और इसलिए हम इस मन को वश में नहीं कर पाए हैं, इसलिए दुनिया में भटक रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है मेरे को सारथी बनाओ, मुझे मन को वश में करना आता है, क्योंकि मन है ही मेरी विभूति, ये और कहीं दुनिया में अटकेगा भी नहीं, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। मन तो ऐसा है कहते हैं हाथी का कन, हाथी का कान कभी एक जगह नहीं खड़ा होता, ऐसे करता है, देखा है ना। पीपल का पन, पीपल का पत्ता ना हवा हो ना हो ऐसे करेगा, और आदमी का मन पेंडुलम की तरह ऐसे घूमता रहेगा, कभी शांत नहीं होता, एक जगह लगने वाला ही नहीं है। भगवद गीता में दसम अध्याय में भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मेरी विभूति मन है। इसका अर्थ यह है कि मन भगवान की विभूति है, जिसकी विभूति है उसी में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, वही उसको संभालेगा और कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए जिसने बुद्धि में भगवान को विराजमान किया तो भगवान उसके मन को संभाल लेंगे। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे, गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। ये संत महात्माओं का कहना है कि देखो इंद्रियों के घोड़े न भगे, आंख देखने के लिए पता नहीं क्या कहां ले जाती है, कान कुछ सुनने के लिए भगाता है, जीभा ने तो हमको इतना परेशान किया है, रोज नए दुकान के ऊपर चाट खिलाती है, कभी गोलगप्पा खिलाती है, और कभी आजकल तो पिज्जा और पास्ता नरक का रास्ता सीधा सा कहीं जाके क्या खाते हैं भगवान जाने, लेकिन ये जो आजकल का भोजन है इस इतने दूषित चीजें मिली हुई है जिसने हमारे संस्कारों का सत्यानाश कर दिया। आप अपने घर में जाके देखें, आपका कोई बच्चा आपके चरणों को छू के जाता है स्कूल रोज, और आज से 50 साल पहले देखो कि बड़े बुजुर्गों के माता पिता के चरणों का कोई स्पर्श करना क्या दबाते थे कि नहीं। अभी तो एक सास ने बहू को कहा, अरे बहू रानी सर में बहुत दर्द है दबा देना, बहू ने कहा जब गले में दर्द हो तब बुला लेना हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि संस्कारों का हमारा सत्यानाश कर दिया है। ये जो भोजन माँ बनाती है, जो भोजन बहन बनाती है, बेटी बनाती है, भारिया बनाती है, पत्नी, उसमें उसका प्रेम होता है, वो भोजन खाने से संस्कार आते हैं। जो बाहर में खाने वाले तो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, तो खाने के बाद दिमाग में पैसा ही घूमेगा, और क्या उसमें डालते हैं भगवान हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतने अभोग्य अयोग्य वस्तुएं उसमें डलती हैं जिसका नाम लेने से भी भय लगता है। आइटम 18, आइटम ए 15, ए 16 ऐसे नाम रखे हैं, उसके अंदर जाके देखो तो क्या है, गाय की किसी में चर्बी है कि किसी में सुअर की चर्बी है, और ये जान बूझ के पथभ्रष्ट करने के लिए जीन्स, जो जीन्स होते हैं ना मेडिकल साइंस में, ये जीन्स को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए संस्कार बिगड़ते हैं। जैसे तो ये तो मान्यता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। अब जय, इसलिए बहुत आवश्यकता है संस्कारों की। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में श्रीला प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में लोगों को संस्कार दिया, जो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं, जो हमने छोड़ दिए हैं, वो संस्कार उधर जाके उनको दिए। आज मैं काल परसों कथा में बात की थी, इसी साल अगस्त सितंबर में मैं रशिया में था, तो गर्भदान संस्कार, रशियन विवाहित पति पत्नी गर्भदान संस्कार करा रहे थे। भारत में गर्भदान संस्कार सुना है क्या, नाम आता है किसी को? यह पहला संस्कार है 16 संस्कारों में कि पत्नी पता पति पत्नी विवाह के बाद सदग्रस्ती ब्राह्मण को बिठाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कोई धर्मात्मा, कोई उदार आत्मा, कोई वीर पुरुष हमारे को संतान के रूप में प्राप्त हो तो फिर उसके बाद गर्भधारण होता है, इसका नाम गर्भदान संस्कार है। यह संस्कार जहां नहीं होता है उसको नराधम कहते हैं, वो संस्कारहीन माना जाता है। और भारत से यह संस्कार लुप्त हो गया। प्रचार का एक काम करके देखा, कॉलेज में प्रचार किया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बोला बच्चों को प्रचार स्कूल में करते हैं, स्कूल में किया, प्राइमरी में किया जाके, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। फिर जाके गर्भदान संस्कार कराना शुरू किया, उनके बालकों को देखा तो बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। ये जो गुरुकुल पद्धति विद्या की के ऊपर आज प्रचार हो रहा है, जो भारत की महानता, भारत में हमारा मान किस बात में था, यहां की विद्या पद्धति गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो भारत की थी, इसके लिए भारत महान था। हर बच्चा गुरु के पास रहता था, गुरु के आश्रम में, और वहां शिक्षा गुरु देता था, और 18 विषय पढ़ाए जाते थे, और एक भी भारतीय 1800 कुछ में ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा न हो। 100% दक्षिण भारत में और 97% उत्तर भारत में साक्षर लोग पढ़े लिखे थे, कोई भिखारी नहीं था और कोई भी बेरोजगार नहीं था। भारत में 7000 से अधिक गुरुकुल थी और बड़े से बड़े गुरु के पास हजारों छात्र पढ़ते थे, और कोई पैसा नहीं लिया जाता था गुरुकुल में। ये तो राजा महाराजा व्यवस्था करते थे गुरुकुल के बच्चों के पढ़ने की। तब उनको वेद पढ़ाया जाता था, 6 शास्त्र पढ़ाए जाते थे, 10 तो ये विषय हो गया, और फिर वेदों के अंग ऐसे, ये 14 विषय, 64 कलाएं सिखाई जाती थी। तो वो कोई नौकरी नहीं करने के लिए, नौकरी काहे के लिए करना। और अंग्रेज ने पहला काम ये किया का यहां की गुरुकुल पद्धति को विध्वंस कर दिया। राजाओं के जो 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 राजाओं की तरफ से धन दिया जाता था उसको बंद करा दिया, और पढ़ाने वाले महान पंडित ब्राह्मणों को बहुत बड़ा कष्ट देके उस पढ़ाई के कार्य को बंद करा दिया। और मेकाले ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी थी कि खेती करने से पहले जैसे किसान अपने धरती में से सब झाड़ उखाड़ के बाहर कर देता है, ऐसे हमने भारत की गुरुकुल पद्धति शिक्षा की को जड़ से उखाड़ दिया है। अब हम कॉन्वेंट अंग्रेज का बीज बोगने जा रहे हैं, भविष्य में देखने में भारतीय होंगे, लेकिन ये हमेशा हमारे नौकर रहेंगे, और ये सब नौकरी के लिए दर दर के ऊपर भागते रहेंगे। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया की कोई भी भाषा सीखो, लेकिन अपने संस्कारों को छोड़ना ये बड़ी दुख की बात है। अभी भी माताओं को हम नमस्कार करते हैं, साड़ी का व्यवहार चल रहा है, लेकिन पुरुषों से ये संस्कार तो प्रायः समापति हो गया। पहले पगड़ी गई, पगड़ी पता नहीं किसने उतार दी, और फिर धोती भी गई, पगड़ी भी कोई ले गया और धोती भी ले गया। पहले पगड़ी तो बहुत बड़े सम्मान की चीज हुआ करती थी, पगड़ी तो पता नहीं कब से गई, हमको भी याद नहीं है। फिर भी हमारे बड़े बुजुर्गों, हमने देखा था हमारे जीवन में, एक फोटो मेरे पास आया था 1915 का, या पूरे दिल्ली के अंदर सब लोग धोती पहनते थे और सबके पगड़ी बंधी हुई है, एक भी किसी को दूसरा कोई वेश पहना हुआ नहीं है। नहीं, टोपी तो बाद में आई, लेकिन पगड़ी थी पहली। टोपी भी भारतीय संस्कृति की नहीं है, टोपी तो फिर कैसे भी आ गई तो आ गई, लेकिन असल में पगड़ी तो बड़ी सम्मान की चीज है। अभी कहते पगड़ी बंधवाओ इसको भाई, अभी भी आपको तीजे के ऊपर क्या करते हैं मरने के बाद, पगड़ी बंधवाते का मतलब ये है कि अब ये इस घर का बड़ा हो गया, इसको पग बंधवाने का मतलब ये यहां पग वाला हो गया, मतलब इस घर का बड़ा ये हो गया। तो पग माले, ये हमारे संस्कार गए कि नहीं है, हमारे सामने गए हैं कि नहीं गए। और इन सब के पीछे एक ही कारण है कि हमने सत शास्त्रों का पठन पाठन समाप्त कर दिया है। ये भगवत गीता को हम कहते हैं जैसे बच्चों को टीके लगाना, पोलियो का ड्राप पिलाना जरूरी नहीं होता है। पहले डरते थे, जब हम स्कूल में कोई टीके वाला होता था तो हम भाग के जाते थे खिड़की से, समझते थे जबरदस्ती टीका लगा रहा है। और अब सब अपने बच्चों को जाके टीका लगा के आते, क्यों कि पोलियो के ड्राप नहीं पिलाएंगे तो टांग टेढ़ी हो जाएगी, खसरे का और टीबी का टीका नहीं लगाएंगे तो खांसी हो जाएगी, ऐसे दिमाग खराब नहीं हो जाए, बच्चों का संस्कारहीन नहीं हो, उसके लिए कौन सा टीका है? उसके लिए ये भगवत गीता की शिक्षा बचपन में बच्चों को दे जानी चाहिए। यह शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। पता नहीं स्कूल कॉलेजों में यह शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कारहीन शिक्षा किस काम की है? यह शिक्षा गुरुजन पढ़ाते थे तो मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता के सेवा करना, पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, अतिथि का आदर करना, ये सब संस्कार कहाँ चले गए? तो हम तो ये विनती कर रहे हैं कि आवश्यकता है बच्चों को इस शिक्षा देने की। अब शिक्षा पद्धति में ये जोड़ा नहीं जा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन इस वक्त फिर भी थोड़ा सा संभावना है, प्रयास किया जाए तो ये भगवत गीता हमारी शिक्षा पद्धति में जोड़ी जा सकती है। नहीं तो कम से कम संडे की स्कूल तो चलाओ, रविवार के दिन बच्चों के लिए भगवत गीता सिखाने का कोई शास्त्र के कुछ नियम, कुछ श्लोक, कुछ उनके अंदर सदाचार, कुछ आचरण। इस वक्त पूरा विश्व चरित्रहीन होता जा रहा है, क्योंकि चरित्र का एक बार नेपाल में ये होगा 87 में ऐसे कुछ है, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का मिलन हुआ था। उसमें एक वक्ता ने कहा कि पानी मुझे अगर पीना है तो किस में दोगे आप? बोला गिलास में देंगे, लोटे में देंगे, कटोरे में देंगे। बोला कोई पात्र चाहिए ना पानी पीने के लिए? बोला हाँ। ऐसे ही चरित्रहीन संसार हो रहा है तो चरित्रता का कौन सा पात्र है जिसके अंदर चरित्र रखा जाए? तब उत्तर सबने ये दिया, अध्यात्मिकता वो पात्र है जिसमें चरित्र टिकता है। इस वक्त अध्यात्मिकता का अभाव है, इसलिए चरित्र का अभाव है और अहीन होता जा रहा है। अध्यात्मिकता का अभाव, हमारे पास बहुत सुपरफिशियल धर्म है, घंटी बजाना है, थोड़ा गाना है, बजाना है, लेकिन क्या शास्त्र में लिखा है? पूरे भारत में मैं नहीं समझता हूं कि 5-10% भी लोग ऐसे मिलेंगे जो रोज गीता का, भागवत का पाठ करने वाले मिलेंगे। और एक जमाना था एक भी ऐसा नहीं होता था, पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन इन सारे शास्त्रों की जानकारी तो दादा दादी घर में बच्चों को देते थे। अब भाग्य से किसी घर में दादा दादी बच्चों को देखभाल करने वाला है, नहीं तो दादा दादी तो बेचारा दुख भोग रहा है, उनको कोई देखने वाला भी नहीं। ये जो नर्सरी जब से आई है, इसका एक ही कारण है कि हमारे संगठित परिवार टूटे, दादा दादी की गोद में अब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए नर्सरी में फेंक के आना पड़ रहा। हमने अच्छी तरह से इसकी खोज करके देखी है। 5 साल से पहले गुरुकुल में बच्चा नहीं लिया जाता। जब बच्चा अपना नाक साफ नहीं कर सके, अपने अपने जो है कपड़े पहनने का उसको जब तक जानकारी नहीं है, तब तक शिक्षा में भेजने का कोई मतलब क्या उसका? जो माँ और दादी जो उसका नाक साफ करेगी, वो कोई काम करने वाली स्कूल में करेगी क्या? नहीं करेगी। ये पहला सबसे बड़ा आघात हमारी जो वैदिक पद्धति के पढ़ाई का ये हुआ है कि हमारे संगठित परिवार विभाजित हो गए। अब कोई परिवार साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छो अकेले खुश होते तो भी हम खुश हो जाते, लेकिन फिर भी डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है आए दिन। इसका मतलब ये दूसरा दुष्परिणाम निकला है। 35 साल तक बच्चा पढ़ता है तब नौकरी के साथ लायक बनता है, 28 साल तक नहीं। तो वैदिक पद्धति में 17 साल का बच्चा आपको तैयार मिलेगा। 16 साल का था अभिमन्यु, अकेला 5-5 महारथियों से लड़ रहा था, तो शिक्षा की पद्धति वो थी 18 साल से पहला बच्चा तैयार होना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई की जरूरत नहीं। आज भी अगर आपको देखना है, आप स्कूल मत भेजो, मैकेनिक के पास बच्चे को भेज दो, मोटर के पूरे इंजन को 15 साल का बच्चा बना लेगा, इंजीनियर 25 साल वाला किताब खोल के भी नहीं बना पाएगा। देख लो, आज अभी आप देख लो, ये जाके एक प्लम्बर को बुलाया काम करने के लिए, एक नल का ठीक किया, पाइप बनाया, $100 अमेरिका में मांगे उससे। वो डॉक्टर का घर था, उसने बोला आधे घंटे के काम के $100, मैं डॉक्टर हूं इतना नहीं लेता हूं, बोला मैं भी डॉक्टर था, मैंने छोड़ के प्लम्बर बना हूं। उसने बोला डॉक्टर तो मैं भी था लेकिन उसमें नहीं था इसलिए प्लम्बर बनाऊंगे, इसमें तत्काल पैसा मिलता है। तो मैं कहता हूं ये काम जिसको करने आता है उसको वैसे आप कित एक एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी, आज तक कोई पढ़ा लिखा पीएचडी प्रोफेसर दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा अरबपति बना है उदाहरण मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। ये मध्यम वर्ग के लोग जो पढ़ते हुए धंधा करते हैं वही करोड़पति बनते हैं। ये अंबानी मैट्रिक फेल बाहर लिखता है और उसके पास सारे पढ़े लिखे एमबीए नौकरी करते हैं और वो पढ़ा लिखा नहीं है। और ऐसे बहुत से हैं जो कभी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सबको नौकरी में लगा। ये पुराने हमारे मारवाड़ी सेठ कुछ भी आंकड़ा भी नहीं आता था लेकिन बड़े बड़ों को बिठा के नौकरी में लगाते कि नहीं लगाते। तो पैसा पढ़ाई से नहीं आता है, ये पढ़ाई तो नौकर बनाने के लिए है। उत्तम खेती बढ़ता व्यापार नीच नौकरी भीख मांगना बेकार, ये हमारे को बचपन में पढ़ाते थे स्कूल में कि खेती है तो आप भाग्यशाली हो, व्यापार है तो महान है, नौकरी है तो नीचता है। और हम सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ये सब पढ़ाई का, हम तो कह रहे हैं कि शास्त्र की पढ़ाई का अभाव हो गया है। वो ये आज प्रोग्राम में सोनाली बसु के प्रेरणा से यहाँ के झांसी के इस्कान मंदिर के भक्तों ने जो आयोजन किया है इसके पीछे हमारा आप सबको एक करबद्ध विनती है कि यहाँ कम से कम 15 दिन में सप्ताह में ऐसे भगवत गीता का सत्संग इस मंदिर में इस कॉलोनी में आयोजन करके और संडे का कोई बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम कहीं ना कहीं व्यवस्था करके हम आपको ऐसे शिक्षा देने वाले सेवा के रूप में भेजेंगे और ये कार्य यहाँ शुरू होना चाहिए। ये तो जन जन तक कार्य पहुंचाना है, गांव गांव तक पहुंचाना है, इसकी जागृति की अति आवश्यकता है। अभी एक तो हमारा पूरा विभाग गुरुकुलपति की स्कूलों को चालू करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो यहाँ ये हमारी विनती है कि आप अगर ये कार्य शुरू करेंगे तो यहाँ एक बीज डालेंगे तो ये बीज भविष्य में बहुत अच्छा सुंदर ऐसा कोई फल वाला वृक्ष बन जाए तो झांसी के इस पूरे क्षेत्र में भला हो जाए। ऐसी प्रेरणा के साथ इस श्लोक में शांति और सुख के लिए भगवान से संबंध स्थापित करना है, उसके लिए भगवान के सत शास्त्र भगवान के भक्तों के संग में बैठकर पढ़ने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप सबका फिर हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। और अब आप थोड़ा आनंद में उठ जाइए बैठ के और एक 10 मिनट का नृत्य के साथ कीर्तन कीजिए ताकि सर्दी भाग जाए। हरे कृष्णा।